ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। शिक्षा में सुधार के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की प्रतिबद्धता। भ्रष्टाचार के मामलों में 5 साल की सीमा अवधि को हटाने का राज्य व्यवस्था समिति का सर्वसम्मति से निर्णय। नवलपरासी के रानी नगर में निर्माणाधीन सेप्टी टैंक में दम घुटने से हुई 3 लोगों की मौत और पाकिस्तान में भूस्खलन में दबने से हुई 12 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश भर में ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने की घोषणा की है ताकि 70% तक छात्र एसईई परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। धूलीखेल में काठमांडू विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति समेत रहे प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि संबंधित निकायों को अंग्रेजी, गणित, विज्ञान सहित मुख्य विषय में केंद्र सरकार के माध्यम से विशेष कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार देश की समृद्धि और समग्र शिक्षा की मजबूती के लिए प्रतिबद्ध है। इसी बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने काठमांडू विश्वविद्यालय द्वारा नेपाल में पहली बार लाए गए हाइड्रोजन कार और रिफ्यूलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया। कोरिया में बनी हुंडई कंपनी का हाइड्रोजन कार काठमांडू विश्वविद्यालय ने नेपाल ऑयल निगम के सहयोग में 33,000 अमेरिकी डॉलर में खरीदा है। प्रधानमंत्री ओली ने आगे कहा कि इसे प्रदूषण कम करने में सहयोग मिलेगा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने योग का अधिक से अधिक अभ्यास और उपयोग करने का आग्रह किया है। आज काठमांडू में संघीय सांसदों के लिए जीवन विज्ञान द्वारा आयोजित आत्म जागरण कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ओली ने उनसे अनुशासन का पालन करने और सकारात्मक बदलाव लाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि योग सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करने का आसान तरीका है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने भक्तपुर के दरबार समेत ऐतिहासिक धरोहरों का निरीक्षण किया। हर महीने सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचने के अभियान के तहत राष्ट्रपति पौड़ेल ने आज सार्वजनिक स्थानों में राष्ट्रपति कार्यक्रम में भक्तपुर से शुरुआत की और विश्व धरोहर सूची में शामिल भक्तपुर दरबार क्षेत्र, ताऊमढ़ी में 5 मंजिला मंदिर, आकाश भैरव क्षेत्र आदि का दौरा किया। ये जानकारी उनके प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल ने दी। अवलोकन के दौरान राष्ट्रपति पौड़ेल ने नागरिकों से बातचीत की और लोगों की शिकायतें सुनी। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व की बिनई त्रिवेणी गांवपालिका वार्ड नंबर 7 रानी नगर में निर्माणाधीन सेप्टी टैंक के अंदर काम करने के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय भोला सिंह क्षेत्री के घर से शौचालय के सेप्टी टैंक के अंदर काम करते समय बेहोश हो गए विनय त्रिवेणी गांवपालिका वार्ड नंबर 7 के 38 वर्षीय प्रकाश सिंह क्षेत्री, 19 वर्षीय गणेश बोगटी और 28 वर्षीय मोहम्मद राजा का इलाज के दौरान मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व के डीएसपी बेद बहादुर पौड़ेल ने दी। भ्रष्टाचार निवारण आयन 2049 में संशोधन करने वाले विधेयक से भ्रष्टाचार की जांच के लिए प्रस्तावित 5 साल की समय सीमा हटा दी गई है। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति की आज की बैठक में सर्वसम्मति से दफा 16 के प्रस्तावित प्रावधान को हटाने का निर्णय लिया गया है जो भ्रष्टाचार की जांच को सीमित करता है। बैठक की शुरुआत में गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए 5 साल की समय सीमा हटाने को तैयार है। उन्होंने समिति से 5 साल की समय सीमा तय किए बिना भ्रष्टाचार निवारण आयन 2049 में संशोधन करने वाले विधेयक पर चर्चा करते हुए ये तय करने का आग्रह किया कि भ्रष्टाचारियों पर किस पद्धति के अनुसार मुकदमा चलाया जाए या दंडित किया जाए। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार निवारण आयन 2049 को संशोधन करने के लिए बने विधेयक 2075 साल में संसद में दर्ज किया गया था। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संसदीय सुनवाई समिति ने आज राजदूत नियुक्ति के लिए अनुशंसित व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ताओं से चर्चा की। संसद सचिवालय सिंह दरबार में आज हुई समिति की बैठक में सरकार ने उन लोगों से चर्चा की जिन्होंने 17 विभिन्न देशों के लिए नेपाली राजदूत के रूप में नियुक्ति किए जाने की सिफारिश करने वाले व्यक्तियों के बारे में समिति से शिकायत की थी। समिति ने आज शिकायतकर्ताओं उज्जवल कृष्ण श्रेष्ठ, मुक्तिनाथ आचार्य, उद्धव प्रसाद पौरे, लक्ष्मी प्रसाद कुंकेल और एक शिकायतकर्ता से चर्चा की जिसका नाम गोपनीय रखा गया है। शिकायतकर्ताओं ने राजदूतों के लिए नामों की सिफारिश समावेशन सिद्धांत के अनुसार न करने, राजदूतों को दोबारा नियुक्त न करने के कानूनी प्रावधान के खिलाफ नामों की सिफारिश करने और अदालत द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करने लगातार मुद्दे उठाए थे। कानूनी प्रावधान है कि राजदूतों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा अनुशंसित व्यक्ति संसदीय सुनवाई समिति की मंजूरी के बाद ही नियुक्ति के पात्र होते हैं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री पांडे ने कहा है कि शेरपा समुदाय पहाड़ों की रक्षा का नायक है। नेपाल माउंटेन इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मंत्री पांडे ने कहा कि जिस तरह गोरखाली वीरों को दुनिया जानती है, उसी तरह शेरपा माउंटेन एवरेस्ट को मशहूर करने वाले नायक हैं। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा है कि पार्टी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। आज सुर्खित विमानस्थल पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि माओवादी केंद्र शांति प्रक्रिया को संपन्न करने, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र की रक्षा और परिवर्तन, दलितों, महिलाओं, आदिवासियों, जनजातियों, मधेशी, मुस्लिम, थारू, श्रमिकों, किसानों लगायत के अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शरद सिंह भंडारी ने कहा है कि राष्ट्रीय आप्रवासन नीति जल्द ही पेश की जाएगी। श्रम मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र आप्रवासन संगठन और जर्मन सहयोग एजेंसी द्वारा श्रम समझौते पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री भंडारी ने कहा कि नीति का मसौदा तैयार हो चुका है और इसे विशेषज्ञों के सुझावों से संशोधित कर संसद में ले जाया जाएगा। ये कहते हुए कि खाड़ी देशों में उच्च तापमान के कारण वहां जाने वाले नेपाली श्रमिकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है, उन्होंने चिंता व्यक्त की कि लगभग 46% युवाओं को किडनी संबंधी समस्याएं हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वावा प्रांत में भारी बारिश के बाद भूस्खलन में एक ही परिवार के 12 लोगों की मौत हो गई है। अपर डीर जिले में राहत कर्मियों ने बताया है कि इस परिवार के कच्चे मकान की छत भारी बारिश की वजह से ढह गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय परिवार के लोग सो रहे थे। मलबे से जिन लोगों के शव निकाले गए उनमें इस परिवार के 9 बच्चे शामिल है। पिछले एक महीने से खैबर पख्तूनख्वावा में भारी बारिश हो रही है, इस वजह से यहां आई बाढ़ ने एक बड़े पुल को भी बहा दिया है। भूस्खलन की वजह से काराकोरम हाईवे का एक हिस्सा भी बंद करना पड़ा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा में सुधार के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की प्रतिबद्धता। भ्रष्टाचार के मामलों में 5 साल की सीमा अवधि को हटाने का राज्य व्यवस्था समिति का सर्वसम्मति से निर्णय। नवलपरासी के रानी नगर में निर्माणाधीन सेप्टी टैंक में दम घुटने से हुई 3 लोगों की मौत और पाकिस्तान में भूस्खलन में दबने से हुई 12 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।